أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجئے محمد وعلیٰ. جیسے کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ آج زیادہ تر طالبات وہ ہیں کہ جو کہ پہلی بار کوئی کلاس اس مدرسے میں اٹینڈ کر رہی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ علم دین کی جس راہ پر آئی ہیں اس کو حاصل کرنے کے اصول کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی ولادت کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ جن میں ایک شہر علم ہے. اللہم صل علی محمد. اور دوسری مکتب تشیع کی وہ ہستی ہے کہ آج پوری فقہ جعفری جس کے نام سے موسوم ہو گئی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. اور جس لحاظ سے بھی آپ کو مبارکباد دی جائے وہ کم ہے کہ جس کوچے اور راہ کے اوپر آج آپ نے قدم رکھا ہے، اسی کوچے اور راہ پر انبیاء، آئمہ معصومین اور علماء چلتے رہیں. اب انہی راہوں پر آپ کے بھی قدم پڑیں گے کہ جہاں پر ان عظیم ہستیوں کے قدم چلتے رہیں. دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم اس علمی میراث میں شامل ہو جاتا ہے کہ جو کہ سابقہ انبیاء، جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور 124,000 انبیاء، وہاں سے یہ میراثی علمی منتقل ہوتی ہوئی پیغمبر اسلام کے پاس آئی، وہاں سے آئمہ اطہار علیہ السلام کے پاس آئی، پھر وہاں سے آگے بڑھتی ہوئی فقہا، مجتہدین، علماء کے پاس آئی، اور وہاں سے طالب علموں کے اندر منتقل ہوئی. یہ ایک علمی میراث ہے. طالب علم اس علمی میراث کا وارث بنتا ہے جو تمام سابقہ انبیاء اور معصومین سے ہوتی ہوئی اس کے پاس آئی ہے. اب آپ خود سوچئے، اگر مثلا آپ کے پاس تمام انبیاء اور آئمہ کوئی چیز امانتاً رکھوائیں، تو آپ کتنی حفاظت کے ساتھ اس امانت کو رکھیں گی، اسے کتنی حفاظت کریں گی، اسے کتنی نگہداری آپ کریں گی؟ بالکل یہی علمی میراث اب آپ کے پاس آ چکی ہے. اس کو ہر طرح سے آپ کو احتیاط سے اس سلسلے میں اقدامات کرنے ہیں، اس کو نقصان پہنچنے سے بچانا ہے، ہر قسم کی احتیاط اب آپ کو اس سلسلے میں کرنی پڑے گی تاکہ اس علمی میراث کی آپ حفاظت کر سکیں. اور دیکھیے، جتنا آپ علم حاصل کرتی جائیں گی اتنا ہی اس پر عمل ضروری ہوگا. عالم باعمل آپ کو بننا ہے، ورنہ بے عمل اگر علم حاصل کرتے چلے گئے تو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بے عمل اہل علم افراد کے لیے متعلق یہ بات کہی ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ افراد کے جو کہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے مثلا خواتین ہیں، وہ علم حاصل کر دی گئیں، اہل علم یعنی علم آگے بڑھتا چلا گیا لیکن عمل میں اس کے مطابق پیچھے رہ گئیں، تو ان کے متعلق بھی یہی حدیث رہے گی. آیت اللہ غراوی اصفہانی کمپانی ہمارے بہت بڑے علماء میں شمار رہے ہیں. وہ یہ فرماتے تھے کہ قیامت میں لوگوں سے یہ بات پوچھی جائے گی، افلا تعلمت، تم نے کیوں سیکھا نہیں. ان کا کوئی جہالت کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. پوچھا جائے گا، بھائی تم نے کیوں حاصل نہیں کیا تھا علم؟ سارے تمہارے اعمال غلط ہوتے چلے گئے اور تم نے آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس کے متعلق کیوں علم حاصل نہیں کیا؟ اور پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ بالفرض اگر علم حاصل کر لیا تھا तो फिर अफला अमिलता, तुमने अमल क्यों नहीं किया, ये दूसरा सवाल होगा। तो ये इल्म जो है ये आपको दुनिया में भी उतना ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा और मरने के बाद कब्र में भी उतना ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला ये इल्म है। बाकायदा एक आलिम नकल करते हैं, बल्कि इससे पहले हदीस ही, कि कब्र में भी फायदा पहुंचाने के एतबार से परवरदिगार ने वही की हजरत मूसा को, ए मूसा खैर की तालीम हासिल करो और फिर लोगों को उसकी तालीम दो, क्योंकि मैं भलाई की तालीम देने वालों और तालीम हासिल करने वालों की कब्रों को इस कदर मुनव्वर कर दूंगा कि वो तन्हाई महसूस नहीं करेंगे। तो इतना ज्यादा इसका सवाब है, सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि मरने के बाद कब्र में भी फायदा पहुंचाने वाली चीज है। हमारे कालिम गुजरे आयतुल्ला हसन अली नकुदकी इस्फहानी, ये इमाम खुमैनी भी इनके पास दस्तूर अमल के लिए जाते थे और एक मशहूर दस्तूर अमल इमाम खुमैनी ने इनसे हासिल किया और फिर कामयाबी हासिल की थी। तो एक आलिम फरमाते हैं कि हसन अली नकुदकी इस्फहानी एक बार उनको अपने साथ ज्यारत कुबूर के लिए कब्रिस्तान ले गए। अच्छा, अब देखिए उलमा के पास चश्मे बरजखी भी अक्सर उलमा के पास होती है जो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, और वो कब्र की कुछ आवाजों को सुनने की सलाहियत रखते हैं और दूसरों को सुनवा भी सकते हैं। तो वो उनका हाथ पकड़ के कब्रिस्तान में ले गए, कह रहे हैं कब्र के पास लेकर गए और मुझसे कहा कि तुम इस कब्र में से आने वाली आवाज को सुनो। अंदर से मुझे इस तरह की आवाजें आ रही थी जैसे कोई कोई खरीद बेचने वाला कोई शख्स जो है आवाजें लगा रहा हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये वो फर्द है कि जो पूरी दुनिया के जब जब तक ये दुनिया में जिंदा रहा है, दुनिया इतनी छाई रही, अपने कारोबार के अंदर इतना मगन रहा कि आखिरत को उसने बिल्कुल हासिल ही नहीं किया, आज भी कब्र में आकर भी ये समझता है कि मैं वही बेचने वाला हूं और वैसी आवाजें कब्र में निकालता है। फिर उसके बाद मेरा हाथ पकड़ा और आगे लेकर गए। दूसरी कब्र से जो आवाज आ रही थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ अज़कार इलाही की कब्र से आवाजें आ रही हैं। कहा ये शख्स जो है दूसरा शख्स, ये अहले इल्म में से है, दुनिया में भी इसकी जुबान जिक्र खुदा के अंदर मशगूल रहती थी, तो अब यही तौफीक इसको कब्र के अंदर भी हासिल है और यहां पर भी उसी तरह से जिक्र खुदा के अंदर मशगूल है। तो और सिर्फ ये नहीं, इसकी बहुत सारी और भी मिसालें कि इल्म इस तरीके से कब्र के अंदर भी, यानी जो इंसान हासिल करता जाए दुनिया में उस हद तक मुनहमिक ना हो जाए, क्योंकि दुनिया में मुनहमिक होने का अंजाम वो पहले कब्र वाले की तरह से होगा कि वहां कब्र में पहुंचकर भी वो दुनिया के ख्यालों में गोया गुम रहेगा। और जो अहले इल्म होंगे जिस चीज में दुनिया के अंदर मसरूफ रहे, आखरत में भी, कहा जाता है कि बहुत से उलमा ऐसे होंगे कि जन्नत में पहुंचने के बाद भी लोगों की हिदायत वहां से मिलेगी, जन्नती उनसे जाकर पूछेंगे कि आखिर हम इन जन्नत की नेमतों को इस्तेफादा कैसे करें, हर आन नई नेमतों का इजाफा ही इजाफा, उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि हम इस नेमतों का इस्तेमाल कैसे करें, तो उलमा से जाकर पूछेंगे। दूसरे एक और आलिम के मुतालिक मिलता है जो शेख फजलुल्ला नूरी। शेख फजलुल्ला नूरी वो थे कि जब मशरूता की तहरीक वगैरह चली थी तो शेख फजलुल्ला नूरी को फांसी दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, और बाकायदा आज भी उनके कब्र के पास वो फांसी का फंदा जो है मौजूद है जिससे उनको फांसी दी गई थी। और कितने उलमा ऐसे हैं कि जो बाकायदा आयतुल्ला साफिया गुलपायगानी मुख्तलिफ मराजे तक शेख फजलुल्ला नूरी की कब्र के ऊपर जाते हैं और वहां फातिहा खानी वगैरह करते हैं। तो शेख फजलुल्ला नूरी के मुताल्लिक आयतुल्ला बहजत ये बात फरमाते हैं कि उनके इंतकाल के बाद काफी दिनों तक उनकी कब्र से शेख फजलुल्ला नूरी की आवाज में तिलावत कुरान की आवाज आया करती थी। एक बार और जरा बेहतर सलावत भेजिए। तो अगर तालिब इल्म बनना है तो तालिब इल्म बनने की जो रिक्वायरमेंट है, और हकीकी तालिब इल्म बनना है, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी शक्ल सिर्फ तालिब इल्म की हो जाती है, बज़ाहिर लगता है कि ये तालिब इल्म है, तो सिर्फ शक्ल शक्ल तालिब इल्म की ना हो, हकीकी तालिब इल्म, صرف شکل مسلمان والی نہ بنائے انسان بلکہ حقیقی مسلمان اور مومن بنے. یہی وجہ ہے کہ اگر یعنی کردار مطابقت نہ کرے اور صرف شکل بنا لی جائے تو یہ بھی منافقت کی ایک قسم بنتی. ہمارے برادران اہل سنت کے ایک بہت اچھے علماء میں شمار ہوتا ہے علامہ بیہقی کا. بہت ہی عبادت گزار تھے, بہت ہی زاہد تھے, بہت متقی و پرہیزگار تھے. بیہقی اس اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے کہ سبزوار کے قریب ایک علاقہ ہے, وہاں کے رہنے والے تھے. ان سے ایک بار کسی نے پوچھا علامہ بیہقی سے کہ جب حاکم شام نے حضرت امیر المومنین سے جنگ کی تھی تو کیا اس کا ایمان سلامت رہا تھا یا ہاتھ سے نکل گیا تھا؟ ظاہر امام وقت کے ساتھ اس نے جنگ کی ہے. تو علامہ بیہقی نے ایک جملہ کہا تھا کہ حاکم شام ایمان میں داخلی کب ہوا تھا کہ جو خارج ہونے کی ضرورت پیش آتی؟ وہ زمانہ رسول خدا میں کفر سے نفاق میں داخل ہوا تھا اور حضرت امیر المومنین سے جنگ کر کے نفاق سے کفر کی طرف واپس چلا گیا. صرف شکل دھوکا دینے کے اعتبار سے اس نے مسلمانوں والی اسلام کا روپ دھارا اور ایک شکل بنائی. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کا صرف اس طرح کا کردار ہو جاتا ہے کہ صرف شکل بنا پاتے ہیں اور کردار سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں. علم کا عمل کا ایک خاص ساتھ ہے, اعتقاد کو عمل کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے. جنت و جہنم کا انسان کو یقین ہے تو اس کے مظاہر اس کے عمل کے اندر نظر آنے چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کوئی کہے کہ میں عذاب قبر کو مانتا ہوں, عذاب جہنم کو مانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی جیسے کوئی کہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ زہر جو ہے وہ زندگی کو ختم کرتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, لیکن پھر بھی زہر کھا رہا ہوں. تو لوگ یہی تو کہیں گے نا کہ بھائی آپ کا اعتقادی اس کے اوپر نہیں. کوئی لاکھ منہ سے کہے کہ میں والدین کی بہت عزت و احترام کرتا ہوں لیکن والدین کے ساتھ بدکلامی کرے تو اس کا صرف یہ کہنا قبول نہیں کیا جاتا کہ دیکھو کتنے اچھے الفاظ میں کہہ رہا ہے. کون سا ایک ٹی وی پروگرام کوئی ماں کے سلسلے میں کبھی آیا کرتا تھا تو اس میں اکثر اداکار حضرات اپنی ماں کی سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے. تو جو افراد جانتے تھے وہ کہتے تھے انتہا سے زیادہ اپنی ماؤں کو ان لوگوں نے پریشان کر کے رکھا اور یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے مثلا میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں اس طرح سے. تو یہ اسی طرح سے عملی مظاہر ہماری زندگیوں میں بھی نمودار ہونے لگتے ہیں. تو یہ علامہ بیہقی جو تھے, بہرحال کی بڑی مشہور کتابیں بھی ہیں, سنن کبیر, سنن صغیر, دلائل النبوہ وغیرہ, اس کے اندر انہوں نے بات کہی تھی. ایک اہم, کیونکہ ہم رہنما اصول بتا رہے ہیں تو اس کے اندر ایک اہم ترین اصول یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے زمانے کے امام سے توسل کرنا بہت ضروری ہے. آج کل شبہات کی دنیا, شکوک کو شبہات اٹھائے جا رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ الرٹ ہونا ہے. سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے اس کے اوپر عقائد کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. بہت سے ایسے سوشل میڈیا کے صفحات ہیں کہ جو کہ باقاعدہ اس طور پر کہ ہمیں کھلے طور پر ڈسکشنز کرنے چاہیے, تو وہ اس میں مزید شکوک و شبہات کی طرف ایک ایسا چیستہ اس کے اندر جو چیز بن جاتی ہے. سوالات اٹھائے جاتے ہیں, سوالات کے مناسب جوابات بھی نہیں ہوتے اور بعض اوقات سے لوگ صرف کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. تو امام زمانے سے اس لحاظ سے توسل. دیکھیے, قوم کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے گلزار شہدا, قوم میں ہے اور حرم معصومہ سے بالکل متصل ہے. وہاں قبر ہے ایک شہید کی, حجت الاسلام شہید سید مشتبہ صالحی خنساری. 39 سال کی ان کی عمر تھی. 1984 میں جو ایران عراق جنگ ہوئی تھی اس میں حجت الاسلام شیخ مشتبہ صالح خنساری شہید ہو گئے تھے. ان کی بیٹی زہرا صالحی وہ فرماتی ہیں کہ شہادت سے ایک ہفتہ پہلے, نہیں اس سے پہلے بلکہ میں وہ کہوں کہ جب جس وقت شیخ مشتبہ صالحی میدان محاذ پہ گئے پھر وہاں پر جا کر شہید ہوئے, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ مستقل لوگ اس کے بعد تعزیت کے لیے گھر پر آتے رہے اور کہہ رہے ہیں میں اسکول نہ جا سکی. تقریباً 6-7 دن اسی طریقے سے گزر گئے. میں اس زمانے میں 6ٹی کلاس میں ہوتی تھی. अच्छा, वालदा भी किसी काम से अपने आबाई गांव चली गई। अच्छा, ईरान में कुछ इस तरह के हालात नहीं है कि मसलन छठी क्लास की भी लड़की अकेली भी घर के अंदर वहां रह जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह की सूरत हाल नहीं होती? तो वो कहती हैं कि एक हफ्ते बाद मैं जब स्कूल गई तो उस वक्त तमाम जो रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह थी वो तकसीम हो चुकी थी। मुझे रिपोर्ट कार्ड लाकर दी वहां की क्लास टीचर ने कि इसको साइन किसी बड़े से साइन करवा कर ले आना। कह रही मैं गमजदा घर वापस आई, माँ भी जा चुकी थी दूसरे शहर, बाप शहीद हो गया था, किससे मैं इस रिपोर्ट बुक को साइन करवाऊंगी? मेरा दिल बहुत भर आया, मैं खूब रोई और उसी में मुझको नींद आ गई। मैंने ख्वाब में अपने बाबा को देखा कि पहले की तरह से हंसते मुस्कुराते ख्वाब में आए और आके कहा कि बेटी जहरा, वो रिपोर्ट जरा ले आना ताकि मैं उस पर साइन कर दूं। कहा कि मैंने कहा बाबा कौन सी रिपोर्ट? देखिए, तालिब इल्म होने के लिहाज से मैं आपको कुछ चीजें ये शेयर कर रहा हूं। कहा कि कौन सी रिपोर्ट? कहा कि वही जो आज तुमको स्कूल में मिली है साइन करवाने के लिए, दस्तखत करवाने के लिए। मैं भागी भागी, यानी ख्वाब में ही कहती है, मैं भागी भागी गई और लाकर दी के बाबा इस रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दें। और उसके साथ मैंने उनको एक बॉल पॉइंट भी दिया। उन्होंने उस पेन से रिपोर्ट कार्ड पे कुछ लिखा, फिर मुझे रिपोर्ट वापस कर दी। मेरी आंख खुली, मुझे ख्वाब याद आया कि मैंने ख्वाब में क्या देखा था। मैं भागी भागी बैग के पास गई, उसको खोला तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि रिपोर्ट में बाबा के बाकायदा दस्तखत हुए हुए थे और एक रिमार्क्स में एक जुमला लिखा हुआ था कि ई जानिब नजारत दारम, मैं तुम पर नजर रखे हुए हूं, और साइन भी किए हुए थे। मैं मुश्तबा साले ही तुम पर नजर रखे हुए हूं। अच्छा, फौरन कह रही कि मैंने अपनी माँ को जो है इत्तला की, माँ को बुलवाया, माँ भी हैरान रह गई। हम लोग कह रही कि हम लोग सब जमा होकर आयतुल्ला खजली के पास गए, ये बाकायदा उसको थोड़ा सा और इनलार्ज करके जो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि नहीं जानिब नजारत दारा, और फिर उनके सिग्नेचर हुए। कह रही हम सब लोग जमा होकर आयतुल्ला खजली के पास गए। आयतुल्ला खजली रहबर मौजम के भी बहुत करीबी रुफाकाम से रहे हैं, उसके अलावा खबरगान रहबरी वगैरह के अंदर भी थे, और पिछले साल ही आयतुल्ला खजली का इंतकाल हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा, आयतुल्ला खजली ने इनके खानवादे से कहा कि, और मना की ये बात कि जब तक मैं माहिरीन से इसकी तस्दीक ना करवा लूं तब तक तुम ये बात किसी को नहीं बताना। फिर उसके बाद उन्होंने ईरान के मुख्तलिफ इदारों के माहिरीन के पास उस रिपोर्ट बुक को भेजा। उन्होंने आगे मुश्तबा सालेही के जो मुख्तलिफ दस्तखत थे उनके नमूने हासिल किए और उन नमूनों से मिलाकर तमाम इदारों ने मुत्तफिका तौर पर एक रिपोर्ट मुरतब की और कहा कि ये वही साइन है मुश्तबा सालेही के 100% के, जो कि वो अपनी जिंदगी में जिस एतबार से किया करते थे, किसी और का ही साइन करना मुमकिन ही नहीं। हद तक के माहिरीन ने कहा कि जिस बॉल पॉइंट की जो जो उसमें स्याही इंक डलती है, ये ना जाने कितने अरसे पहले ये बॉल पॉइंट आया करते थे, ये बंद हो चुकी है, अब ये मुमकिन भी नहीं है कि किसी के पास ये बॉल पॉइंट हो। उसके बाद आज भी ये जो रिपोर्ट बुक है ये तेहरान के शोहदा म्यूजियम के अंदर बाकायदा इस रिपोर्ट बुक को रखा गया है, और इसको तस्दीक करने वाले ईरान के कितने ही माहिरीन हैं, और आयतुल्ला खजली की निगरानी के अंदर इस बात की तस्दीक हुई। और उसके बाद वही सहला जो जो खातून मौजमा है जहरा सालेही, वो आज तक ये वाकयात जो है ये लोगों को सुनाती हैं। अच्छा, ये वाकया आपको क्यों सुनाया गया? इस वजह से सुनाया गया जिससे पहले हम बात कर रहे थे कि आप तालीम दीन के लिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें। एक शहीद बाप अपनी बेटी पर आलम अरवाह से नजर रख सकता है, ये और ये होना मुमकिन है। تو آپ کا جو امام جو کہ اسی دنیا کے اندر موجود ہے، آپ کے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. آیت اللہ بیجت فرماتے تھے کہ ابھی ہم کوئی لفظ ہمارے منہ سے نکلتا نہیں اور امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ جاتا. تو آپ اپنے حصول علم کے سلسلے میں اپنے زمانے کے امام کو اپنے اوپر ناظر مقرر کریں کہ مولا آپ میرے تمام علم دین حاصل کرنے کے لیے جو میں اس راہ پر آئے ہوں، آپ میری نگرانی کو قبول کر لیجیے. جب ایک شہید اپنی بیٹی کے اوپر ایک ناظر ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے کسی بھی اعتبار سے اس کو کوئی کرامت کے طور پر کوئی طاقت اس کو دی جا سکتی ہے، اور بھی بہت ساری روایت ایسی ہیں کہ عالم اروا سے عالم برزخ سے والدین بھی اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ امام ہمارا اس دنیا کے اندر موجود ہو اور وہ ہمارے اعمال سے مطلع بھی ہوتا ہو تو اس کو ہم اپنے اوپر ناظر مقرر کر لیں. اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، مثلا کبھی بھی آپ کوئی کتاب اٹھائیں، کوئی کاپی اٹھائیں، تو کم سے کم ہر دفعہ توسل کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک درود پڑھ لیا کریں. اور دوسرا ایک کام یہ کریں کہ کم سے کم جس سے آپ کا امام زمانہ علیہ السلام سے ارتباط روزانہ بڑھتا چلا جائے کہ نمازوں کے قنوت میں آپ اللہم کن لولیک الحجت والی کم سے کم ایک مرتبہ تو روزانہ ضرور پڑھا کریں. یہ بہت ہی بہترین علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا، اخلاص آئے گا، امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصی نگاہ آپ کے اوپر ہو جائے گی، اور بہت اطمینان کے ساتھ یہ علم حاصل کرنے کا مرحلہ ہی آگے سے آگے بڑھتا جائے گا. دوسرا رہنما اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ علم حاصل کریں اس کو دوسروں تک پہنچائیں. مثلا آپ نے کوئی کتاب پڑھی، آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کوئی کتاب جو پڑھی، اور اس میں بہت ساری کسی حدیثیں آپ نے پڑھی، اب آپ لوگوں کو سنائیں. دیکھیے بہت سی چیزیں انسان اپنی شیئر کرتا ہے صرف اس وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو، خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی ویسا پہلو نہیں ہوتا کہ شیخ خورا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، بس اپنا ایک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے زمانے طالب علمی کا جو ابتدائی دور تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مولانا صادق حسن صاحب قبلہ سے پڑھنے کے لیے جاتے تھے، انٹرمیڈیٹ یا اس کے قریب قریب کا زمانہ تھا، کہ ان سے جو بھی درس میں سنتے تھے اس کو خوب اس کی پریکٹس کرتے تھے. ایک گھنٹہ تقریباً بس کا سفر ہوتا تھا کہ ہم گھر واپس آتے تھے، تو اس سفر میں ہی اس ایک گھنٹے کے دوران کاپی سے پورا ریوائز کرتا ہوا آتا تھا. صرف اس وجہ سے اپنی چیز شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو، کوئی وقت ضائع نہ کریں، مثلا کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے آپ کا. اس لحاظ سے اس کو چیز بتائی جا رہی ہے کہ مثلا وین کے اندر بھی آپ بیٹھ کر جا رہی ہیں تو آپ اس وقت کو بھی ضائع نہ کریں. اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد مسجد خیر العمل جو ہماری انچولی میں ہی ہے، یہاں پر نمازیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ اور دوستوں کا بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جو کچھ اس دن سن کر آتا تھا وہاں بیٹھ کے دیگر لوگوں کو سنا دیا کرتا تھا. تو اس طرح مجھے بھی سبق ازبر ہو جاتا تھا اور لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہو جاتا تھا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو روزانہ کرنا پڑیں گی، باتوں ہی باتوں میں جو چیز یہاں سے سیکھیں، واقعات سنیں. اس کی آواز تھوڑی کم کر دیجیے، کچھ گونج رہی ہے. تو لوگوں تک جب یہ بات پہنچے گی تو لوگوں کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا. اچھا، یہ بات یوں بھی بہت ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر لا علم افراد ہیں ان کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے، ان سے بھی ہمدردی کرنا ہے. یعنی کیسے ممکن ہے کہ آپ کی اپنی نمازیں تو صحیح ہوتی چلی جائیں، لوگوں کے یعنی اور آپ کے اپنے وضو صحیح ہوتے چلے جائیں، آپ کا اپنا عمل صحیح ہوتا چلا جائے، لیکن آپ دوسرے لوگوں کے دیکھتی رہیں کہ ان کی وضو غلط ہو رہے ہیں، ان کی نمازیں غلط ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو خود اس کا خیال کرنا پڑے گا. لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خمس نہیں نکال رہے ہیں، مال حرام ان کے جسموں کے اندر جا رہا ہے، اس کے اثرات ہو رہے ہیں باقاعدہ، تو یہ آپ کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہمیشہ دوسروں کا سوچئے، چاہے دنیاوی اعتبار سے سہولتوں کے اعتبار سے بھی یہی اصول ہے اور علم دین کو دینے کے اعتبار سے بھی اصول یہی، ہمیشہ علم دین دینے سے بڑھتا ہے. اچھا، یہ اصول دیگر چیزوں میں بھی، مثلا یہ کہ اگر آپ کو خدا نے کوئی نعمت دی ہے اور آپ دوسروں کو اس کو استفادہ اس سے کرنے دیں تو اس سے بھی وہ نعمت بڑھے گی. कितना लोग देखते हैं अरबईन के अंदर कितने मज़ाहिर देखने में आते हैं कि इंतहा से ज्यादा गरीब अफराद तक पूरे साल बाज़ोकात वो लोग लिहाफ और कंबल के पैसे जमा करते हैं, इतने ज्यादा गरीब हैं। क्या हालात हैं वहां के, आप सोचिए इराक के जंग ने कितने हालात जो है लोगों के माली हालात को खराब किया। गरीब तरीन अफराद भी उनको पता है कि जायरीन यहां पर आएंगे उनके लिए बाकायदा पैसे जमा करते हैं, कंबल जमा करते हैं, लड़कियों को जो जहेज मिलता है वो संभाल कर रखती हैं और सिर्फ पहली दफा यानी उसकी ओपनिंग करती हैं उस वक्त के जबकि अरबईन का मौका होता है कि जायरीन की खिदमत के लिए पहली दफा अपने उस जहेज को खोलकर इस्तेमाल करती। और गरीब से गरीब अफराद की यह हालत है। तो सोचिए कि जो भी नेमत आपके पास हो, जो भी नेमत आपके पास हो उसमें दूसरों का ख्याल, और इस हद तक हमारे उलामा ख्याल में लोगों के जब ये इस इल्मी लेवल तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि आयतुल्लाह शेख हसन अली नकुदर की इस्फहानी, इनका इससे पहले भी अभी तस्कर आया था, ये खुद आकाए मिर्जा बुजुर्ग शिराजी के शागिर्दों में से थे और अपने वतन इस्फहान को छोड़कर खुरासान में जाकर आबाद हो गए थे, फिर उसी को अपना वतन करार दे दिया था। वो खुद फरमाते हैं कि जब हम नजफ में जेर तालीम थे और तालिब इल्मी वगैरह का दौर था, तो नजफ से कूफा जाते थे, ज़ाहिर कूफा मस्जिद कूफा के आमाल अंजाम देना और मस्जिद सहला वगैरह जाना, फिर वापस कूफे से नजफ आते थे। तो कह रहे एक बार मैं कूफे से नजफ वापस आ रहा था कि डाकुओं ने हमला कर दिया, सारा मेरा माल असबाब जो है वो लूट लिया, अंदरूनी लिबास के अलावा हत्ता कि मेरा अमामा अबा कबा वगैरह तक जो है वो डाकुओं ने लूट लिया। तो फरमाते हैं कि मैंने डाकुओं से कहा, देखिए उलमा का तरीकेकार, कि तुम सबको मैं ये जितनी चीजें हैं अपनी रजामंदी से बख्शता हूं ताकि कम से कम मेरी तरफ से तुम लोगों को ये मेरा सामान इस्तेमाल करने का अजाब ना भुगतना पड़े, क्योंकि ये मेरा लिबास तुम्हारे लिए गसबी है, ये आतिश जहन्नुम का सजावार बन जाएगा। इससे बेहतर ये है कि मैं नहीं चाहता कि तुमको इतना भी नुकसान पहुंचे, कम से कम मैं अपनी तरफ से ये हक तुम पर माफ करता हूं और अपना तमाम ये माल तुमको रजामंदी से बख्शता हूं ताकि कम से कम मेरी तरफ से तुम आतिश जहन्नुम में ना जलो। डाकुओं ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, इतना असर कबूल किया कि आयतुल्ला नकुदर की इस्फहानी का तमाम उनका लिबास और मालो असबाब वापस किया, बल्कि उन्हीं के हाथ पर उसी वक्त तमाम डाकुओं ने तौबा की। दुरूद भेजिए मोहम्मद अली, आम अफराद का इतना ज्यादा ख्याल हत्ता कि डाकुओं का ख्याल, और फिर आपने देखा कि उसका नतीजा क्या निकला कि तो वो तमाम डाकू तायब हो गए उन्हीं के हाथ पर। तो लोगों का इस अंदाज से ख्याल करना है तब इल्म के अंदर आगे बढ़ेंगे। और बाकायदा इस वाक़े को यकसद दास्तान ख्वानदनी जो कि आयतुल्ला सैयद मोहम्मद शिराजी की लिखी हुई किताब है, उसके अंदर भी यह वाकया मिलेगा। और भी वाकयात हैं, ये तो फिर भी इंसानों की बात थी। आयतुल्ला सैयद मोहम्मद बाकर शफ्ती, वो खुद फरमाते हैं कि एक दफा मैं बाजार से कुछ गोश्त लेकर आ रहा था, बहुत मामूली सा गोश्त यानी जितना एक वक्त में खाया जाता है, बहुत ही कम मकदार थी, तो मैंने देखा कि कुत्ता बहुत ही हसरत के साथ उस गोश्त को देख रहा है, शदीद भूखा था। अच्छा देखिए, आइम्मा की सीरत में भी ये बात है, क्योंकि जानवर देख रहा होता था तो पहले आइम्मा हमारे उस जानवर के सामने उस खाने को रख दिया करते थे, क्या कि वो देखता ना रहे। कह रहे मुझे भी उसकी भूख देखी नहीं गई, गोश्त बहुत कम था, सारा गोश्त ही उस कुत्ते के सामने रख दिया, शदीद भूखा था वो, सब गोश्त खा गया। और वो दिन आकाए बाकर शफ्ती ने पूरा दिन भूखे रहकर गुजारा। और फरमाते क्योंकि उस जानवर की एहतियाज और जरूरत मुझसे भी ज्यादा थी। अच्छा ये वाकया आयतुल्ला बहजत ने सुनाया, आयतुल्ला बाकर शफ्ती का ये वाकया, उस गोश्त को खिलाने के, उस भूखे कुत्ते को गोश्त खिलाने के बाद आकाए बाकर शफ्ती फरमाते हैं कि इल्म मारिफत के कितने ही दरवाजे मुझ पर खुलते चले गए। तो आपने देखा कि ना सिर्फ ये कि किसी लोगों की हर वक्त उसका बहबूदी का ख्याल, लोगों की इसलाह का ख्याल, लोगों की जरूरियात का ख्याल, हत्ता के जानवर तक की जरूरत को अगर इंसान इखलास नीयत के साथ पूरा कर दे तो इल्म और मारिफत के दरवाजे उसके ऊपर खुलते चले जाते। तो एक रहनुमा उसूल ये इल्म हासिल करने का ये भी बनाइए कि जो इल्म हासिल करें दूसरों तक पहुंचाएं, जो बात आपको पता चले, जो मसले मसाइल पता चले, जो अहादीस मुबारक पता चले दूसरों तक पहुंचाएं, और उनकी हर लिहाज से मदद करने की लोगों की कोशिश करें अपनी सलाहियतों के एतबार से। हत्ता के दीगर आपकी क्लास फेलोज तालिबात जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियों के सिलसिले में कोशिश करें, क्योंकि हमने देखा है बहुत सी खवातीन के मसलन उस वक्त तक तो दुआएं और वो चल रही होती हैं, जब अपनी शादी हो जाती है उसके बाद सब दीगर अपनी क्लास फेलोज और उनको भुला देती हैं कि उनके लिए भी इंसान कुछ कोशिश करे, उनके लिए भी खानदान बढ़ जाते हैं, दूसरे खानदानों में जाना होता है, उनके लिए और ज्यादा मौाक़े उनके पास होते हैं कि वो इस सिलसिले में कारामद हो सकती हैं, लेकिन वो अपने इस तरह से जाकर मसरूफ हो जाती हैं, जो खुदगर्जी की जिंदगी गुजारने लगती हैं कि जिस जैसे कोई अपने उस वक्त को भूल जाती हैं कि जब इन तमाम मुश्किलात का खुद शिकार थी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये तमाम चीजें लोगों का ख्याल करने में शामिल है जिसके अंदर शादी वगैरह का भी मसला, और इतनी अहम बात है ये इल्म हासिल करने के एतबार से इसका इतना ज्यादा कवी ताल्लुक है कि आयतुल्ला बुरुजर्दी, आयतुल्ला सैयद हुसैन बुरुजर्दी, वो फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं बुरुजर्द में था तो मैंने वहां पर एक ख्वाब देखा था कि तमाम उलमा सालेहीन जाहिदीन का एक मजमा है और दरमियान में उनके जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। फरमाते हैं कि मैं उस महफिल के अंदर गया, मैंने वहां पर हाजिरीन को सलाम किया और जो नशिस्त मेरे लिए मखसूस थी वो मुझको दी गई। कह रहे मैंने देखा कि सदर मजलिस में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुज्तहिदीन, सादात कराम, जोहाद, जाहिदीन, मुत्तकी परहेजगार अफराद एक खास तरतीब फजीलत के साथ बैठे हुए हैं, जितना जिसका मुकाम और मर्तबा है उसके मुताबिक उसकी नशिस्त रसूल अल्लाह के उतनी ही करीब है। अचानक मैंने देखा कि एक आलिम थे आयतुल्ला सैयद मेहदी बहरुल उलूम, उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था सैयद जव्वाद तबातबाई, और ये आयतुल्ला बुरुजर्दी के अजदाद में से भी होते थे। मैंने ये देखा कि उनकी नशिस्त बड़े बड़े उलामा से भी ज्यादा रसूल अल्लाह के करीब है। अच्छा, मैंने कह रहे मैंने ख्वाब ही में आयतुल्ला बुरुजर्दी फरमाते हैं कि मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि सैयद जव्वाद तबातबाई तो उन बड़े बड़े उलमा से इल्म में बहुत कमतर हैं, उनसे ज्यादा आलम तो नहीं है जो कि पैगंबर इस्लाम से जिनकी नशिस्त थोड़ी सी दूर है, तो आखिर सैयद जव्वाद तबातबाई को ये फजीलत क्यों हासिल हुई कि पैगंबर इस्लाम की इतनी करीब नशिस्त उनको दी गई। कह रहे हैं अभी मैं ये सोच ही रहा था कि फिजा में पैगंबर इस्लाम की आवाज मुबारक गूंजी और कहा कि सैयद जव्वाद लोगों की खिदमत और उनके काम आने में सबसे ज्यादा कोशिश करने वाला है, इस वजह से मुझसे ज्यादा करीब है। दुरूद भेजिए मोहम्मद। बाकायदा इस वाकये को जो मुजल्ला हौजा है, एक बाकायदा मुजल्ला निकलता है हौजे के नाम से, उसके अंदर सैयद इस्माइल अलवी तबातबाई ने जहां शरह हालात जिंदगी आयतुल्ला बुरुजर्दी लिखी है वहां उनका एक ख्वाब नकल किया, और इसके अलावा जो एक किताब लिखी गई है बहुत मशहूर किताब है जिसके कई वॉल्यूम है गालिबन चार, मर्दान इल्म दर मैदान अमल, उसकी भी जो चौथा वॉल्यूम है चौथी जिल्द है उसके अंदर यह वाकया और यह ख्वाब आयतुल्ला सैयद हुसैन बुरुजर्दी का नकल किया गया। तो आपने देखा कि पैगंबर इस्लाम के भी ज्यादा करीब, यानी अगरचे बड़े बड़े उलमा और मौजूद थे लेकिन सैयद जव्वाद तबातबाई लोगों के काम आने में उनसे भी ज्यादा कोशिश करने वाले थे, तो पैगंबर के और ज्यादा करीब उनको नशिस्त दी गई और उनका मुकाम और मर्तबा ज्यादा बड़ा हो गया। बाज़ अवक़ात ये होता है ना कि इंसान इल्म तो हासिल करता चला जाता है उसके अंदर अपने बेहतरी आती जाती है, लेकिन अब लोगों को ज्यादा उतना मदद नहीं करता वो। तो इसमें ये वाला पहलू भी दिमाग में रखें कि हर एतबार से लोगों की मदद करनी है, जिसके अंदर इल्मी मदद भी शामिल है, जिसके अंदर फिजिकल मदद भी शामिल है, माली मदद भी शामिल है, शादियों के सिलसिले में मदद भी शामिल है, हर वो चीज जिसकी लोगों को एहतियाज हो आप खिदमत के तौर पर उसको अंजाम दें, आगे बढ़ें, फिर देखेंगे इल्म और मारिफत के कितने दर्जे हासिल होते चले जाएंगे और उतना ही मासूमीन के करीब होती चली जाएंगी। और मुकम्मल इखलास होना चाहिए इधर, ये भी एक उस लिहाज से इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि जरा बस ये नहीं कि इल्मी बड़ाई को हासिल करने के लिए, शोहरत पसंदी के लिए, खुदा ना खास्ता कोई गुरूर का दखल ना आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे इल्म बढ़ता चला जाता है इंसान मगरूर होता चला जाता है, हर वक्त दूसरों की छोटी छोटी बातों को पकड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को पकड़ेगा कि मेरा इल्म ज्यादा बढ़ गया है, अब फला फला को जो है इसमें गिरफ्त की जाए इसकी। तो सिर्फ अल्लाह के लिए अपनी जात को बेहतर बनाएं, अपनी आखरत को संवारने के एतबार से, और उसके बाद फिर तबलीग भी उसके साथ साथ करें। हमारे उलमा में शेख जव्वाद तबरेजी, ये खुद फरमाते थे कि मैं कलम को हाथ में उठाते वक्त भी कुर्बतन इलल्लाह की नियत करता हूं, सिर्फ कलम को हाथ में उठाने के लिए। फिर फरमाते हैं कि फिर कागज पर जब मैं कलम को चलाता हूं उस वक्त भी कुर्बतन इलल्लाह की नियत करता हूं, यानी दिमाग में हर वक्त ये रहता है कि मैं ये काम रजाए इलाही के लिए कर रहा हूं। हत्ता के लिए शेख जव्वाद तबरेजी के फरमाते थे, जब मैं दर्स के लिए कुर्सी पर बैठता हूं तब भी यही नियत होती। हत्ता के शेख जव्वाद तबरेजी जिस वक्त इस्तफ्तात के जवाबात वगैरह लिखवाते थे और लोगों के सवालात के जवाब देते थे, तो कहते हैं हर हर मौके पर खुदा खुदा और सिर्फ खुदा, मुकम्मल इखलास, कि कहीं से भी कोई ऐसी नियत ना हो कि अपनी इल्मी बढ़ाई, अपनी इल्मी बरतरी, हर वक्त खुदा को अपने ऊपर हाजिर और नाजिर समझना कि हर वक्त खुदा हमारे तमाम अमाल को देख रहा है और उसकी नियत से उन तमाम अमाल को अंजाम देना। हत्ता कि इस हद तक मोहताज थे कि शेख जव्वाद तबरेजी के पास एक आलिम आए हुए थे, शेख मुर्तजाए मंसूरी। उन्होंने एक दफा के कहा कि शेख जव्वाद तबरेजी जो है वो बीमार थे आखिरी अय्याम में, कहा कि आज मैं मिंबर पे जाकर आपके लिए दुआ करवाऊंगा। फौरन रोक दिया, खैर नियाज नहीं, हरगिज जरूरत नहीं है इसकी कोई, ये मिंबर फकत हजरत अमीर, हजरत जहरा और सैयद शबाब अहले जन्ना और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मखसूस है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहां सिर्फ उनके फजाइल पढ़े जाएंगे। सख्त नाराज होते थे अगर कोई मिंबर पर बैठकर उनकी कोई तारीफ करता था या उनका नाम भी लेता था, और कहते थे कि मुकाम अहले बैत काबिल कयास नहीं है, और किसी शख्स को भी इस मिंबर पर बैठ के किसी दूसरे शख्स की तारीफ करना या उसका जिक्र करना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फकत और फकत अहले बैत के फजाइल का मिंबर है और उनकी तालीमात को लोगों तक पहुंचाने की जगह है। एक और रहनुमा उसूल के तौर पर एक चीज और याद रखिए, वो ये है कि अपने वक्त को तालिब इल्म कभी जाया ना करें। जवानी के ये फुर्सत वाले जो लम्हात हैं ये बहुत तेजी के साथ पर लगाकर गुजर जाते हैं, और उसके बाद अधेड़ उम्री का एक दौर और बुढ़ापे का एक दौर बीमारियों की नजर होता है। ये तो हमने फकत और फकत अपने उलमा और मुज्तहिदीन ही को देखा है कि वो कमरें उनकी झुक जाती हैं, या आयतुल्ला सैयद महमूद शाहरुदी, लेकिन उसके बावजूद इल्म का और इनका साथ कभी छूटने नहीं पाता। आयतुल्ला साफी गुलपायगानी, वरना हमने और बूढ़े भी देखे हैं, आप खुद देख लेंगे, यहां 60, 65, 70 साल जो क्रॉस करता है उसके बाद किताबों विताबों से उसका कोई वास्ता नहीं होता, बस या तो टीवी के चैनल तब्दील करता रहेगा बैठ के देख के, वो कोई किताब को उठाते हुए उसको नहीं देखेंगे, या मसलन खांसता रहेगा और अखबार पढ़ता रहेगा। वो बूढ़ा शख्स जो हमारे माशरे के अंदर जिस एतबार से हैं, सिवाय इसके कि चंद ऐसे हैं कि जो अपने उसको अच्छे तौर पर भी गुजारते हैं, लेकिन उलमा की सीरत एक बड़ी अजीबो गरीब है कि जितना उम्र उनकी बढ़ती चली जाती है, खासतौर पर हमारे महाराजे, उतना ही इल्म के एतबार से वो उसी किताबों और उसी इल्म दीन के अंदर हर वक्त गर्क रहते हैं। जैसे ये आयतुल्ला तकी बहजत हर वक्त इल्म का और किताबों का एक साथ, ये आयतुल्ला सिस्तानी है और उन मराजे में से हैं कि अक्सर व बेशतर घर में भी आम तौर पर हर वक्त किताबी उनके हाथ में रहती है। लेकिन इसके अलावा ये वक्त अगर तालिबे इल्म अपना ज़ाया कर दे और जवानी का वक्त जो कि तेज़ रफ्तारी के साथ गुजर जाता है, उसके बाद अधेड़ उम्री के अंदर एक से एक मर्ज लगने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर बुढ़ापा आ जाता है, उसके अपने संगीन मसाइल होते हैं, तो उस वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल कर ले और उसको ज़ाया ना करें। और इसके लिए कोशिश ये करें कि सहेलियों के सिलसिले में बहुत आपको एहतियात की ज़रूरत है फ्रेंड्स वगैरह बनाने में, कि जो भी आपकी सहेली हो चाहे वो उम्र में आपसे बड़ी ही क्यों ना हो उसको, और हम फिक्र हो आपकी, तो उसको आप अपना दोस्त जो है वो बना लें, उसके तजर्बात से भी फायदा उठाएं, उसके इल्म से भी फायदा उठाएं। मुझे भी अच्छी तरह याद है कि बहुत सी चीज़ों शेयर करने के अतबार से, सिर्फ ये कि आप कि मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं अपनी से एक क्लास जो ये आगे की क्लासेज वाले हैं उनसे दोस्तियां ज्यादा किया करता था बनिस्बत अपनी क्लास फेलो, अपने जो क्लास फेलोज हमारे होते थे, कोशिश ये होती थी ताकि, और दीनी एतबार से एक होता था कि अच्छा ये इनसे मुझे कोई इस्तेफादा हो सकता है, तो बाकायदा उनके घरों पर भी जाया करता था, उनसे एक दीनी लिहाज से अपना हो, ताकि उनके इल्म और तजर्बात ज्यादा से ज्यादा हासिल किया जा सके। बहुत फायदा उठाया, कितने हम आपके जो यहाँ पर असातजा आते हैं उस जमाने में जो है वो, जब हम मौलाना सादिक साहब से पढ़ने जाते थे, मौलाना आमिर यासू भी हमारी क्लास में होते थे, मौलाना नादिर सादिकी क्लास में होते थे, मौलाना रजा रूहानी भी क्लास में होते थे, ठीक है ये लोग फिर इल्म में बहुत आगे निकलते चले गए, यारा ने तेज गाम ने मंजिल को जा लिया और हम महवे नाला जरा से कारवा रहे, तो बहरहाल यहाँ पर, लेकिन ये कि बहरहाल अभी तक उनसे बहुत अच्छा जो है वो ताल्लुक है और एक बहरहाल एक एक फख्र का सा एहसास होता है कि कभी हम इनके साथ भी जो है वो तलब इल्म के लिए बैठे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी आप कोशिश करें कि अपनी ऐसी सहेलियां बनाएं, ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो आपके वक्त को जाया करने वाले ना हों। और एक चीज और भी है जो कि आगे चलकर ये काम आएगी आपको, कि इब्तदाई तालीम को हासिल करने के साथ साथ कोई एक टारगेट ऐसा रखें कि अपने ज़ौक़े इल्मी के मुताबिक कोई मौजूआती महारत भी हासिल करें। अमूमी तो आपको हासिल करने हैं सारे उलूम ही, लेकिन कोई एक मौजूआती महारत, मसलन औरतों के मखसूस अय्याम के जो फिक्री मसाइल हैं, इसमें ढूंढे से भी हमें खवातीन नायाब हैं और बहुत मुश्किल से रसाई हो पाती है, और कितनी बड़ी औरतों की तादाद है, कितने ज़्यादा मसाइल हैं, शर्म हया के बायस भी उलमा से नहीं पूछ पाती हैं, रसाई नहीं हो पाती, खुलकर बात नहीं कर पाती। आप में से कोई इस बात का बेड़ा उठाए कि नहीं मैं इसमें मौजूआती महारत हासिल करूंगी, और बाकायदा इस अंदाज से कि किसी को गलत तौर पर नहीं, यानी बाकायदा महारत को हासिल करके और पहुंचाया जाए। कितने फैमिली इश्यूज ऐसे हैं उसमें आप मौजूआती महारत को जो हासिल कर सकती हैं, कोई वजू के मसाइल में महारत हासिल कर ले, कोई नमाजों के मसाइल में कर ले, कोई हिजाब और पर्दे के मसाइल के अंदर कर ले, इतनी तफसीली इतनी ज्यादा चीजें उसके अंदर आती जा रही हैं कि इस तरह की मसाइल या घरेलू जिंदगी के मुतालिक। अब आमतौर पर ये हो गया आजकल हर वक्त लोगों के हाथों में ये मोबाइल फोन आने लगे, उचटती पुचटती सी मालूमात, फेसबुक पे कोई चीज पढ़ ली, एक पोस्ट वहां से पढ़ ली, एक चीज वहां से पढ़ ली, इससे कोई खातिर ठीक है कुछ ना कुछ फायदा होता है, लेकिन जिस एतबार से बाकायदा इल्मे दीन के अंदर एक महारत हासिल करना है वो उसका एक खास तरीकेकार है। ये आजकल हर वक्त बैठे हुए सिर्फ उंगलियां उसके ऊपर जो है मोबाइल फोन के ऊपर चलाना, इससे कोई बहुत मामूली सा इल्म हासिल होता है और उसके अंदर भी ज्यादा गहराई नहीं आती। तो ये आप अपना कोई ना कोई एक टारगेट बनाएं, और इल्म दीन हासिल करने के लिए कुछ वक्त तो इसमें लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट है। कहा जाता है ना कि इल्म और तजर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये खुद हासिल करना पड़ता है। तो जल्दबाजी की इसमें कोई जरूरत नहीं है। और मौजूआती महारत, देखिए जैसे कहा जाता है ना एक चीज, ये मैंने चाहे इब्तदाई तालिबे इल्म क्यों ना हो, उलमा के नजदीक उसका इतना मुकाम है कि ये बिल्कुल इब्तदाई तालिबे इल्म है और ये आयतुल्ला साफी गुल पाएगा, यानी उनका हाथ चूम रहे, तो ये बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा आपको इब्तदाई से जो है वो हासिल हो जाता है। एक दीनी तालिबे इल्म उस राह के ऊपर आ गए जिसके ऊपर, जैसे मैंने इससे पहले कहा कि अंबिया चलते रहे और मासूमीन चलते रहे, अब एक बहुत मुकाम और मर्तबा और मंजिलत आपकी हो गई इस राह पे आने के बाद, इसकी बहुत ज्यादा इस निस्बत की हिफाजत करना है। तो मौजूआती महारत के एतबार से यही तालिबे इल्म आगे बढ़ेगा, कोई ना कोई महारत इसको हासिल हो जाए। तो इस हद तक जैसे कि आपने सुना होगा नाम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब वो हैं जो आजकल हर घर में जो नहजुल बलागा है या मसलन सहीफ कामला है, जिसका सबसे ज्यादा तर्जुमा जो पढ़ा जाता है वो मुफ्ती जाफर साहब वाला तर्जुमा है। ये खुद फरमाते हैं कि जब इनके उस्ताद यहां पर आए थे आयतुल्ला अली नकी नक्कन साहब, अल्लामा नक्कन साहब जिन्हें कहा जाता है और सैयदुल उलमा के लकब से मशहूर हैं, तो जब इन्होंने मुफ्ती जाफर हुसैन साहब क़िबला ने जब ये नहजुल बलागा उनकी खिदमत में पेश की कि ये मैंने तर्जुमा किया है, तो वाकई तर्जुमे की इतना ज्यादा ऐसी रवानी है, कभी आप सहीफ़े कामला की आप दुआएं उठाकर देखें नहजुल बलागा में, इतना बेहतरीन तर्जुमा, ऐसी महारत थी कि सैयदुल उलमा ने बाकायदा एक जुमला जो लिखा उनकी उस लिहाज से हौसला अफजाई भी हुई और वाकई इनकी महारत जो इन्होंने हासिल की थी इस सिलसिले में उसका भी इजहार होता है। एक जुमला लिखा अल्लामा नक़्क़न साहब ने कि अगर मौला अली उर्दू में गुफ्तगू फरमाते तो इसी तरह गुफ्तगू फरमाते जो इस तरह इसमें लिखी हुई। तो ये एक बात हुई कि आइंदा के लिहाज से एक टारगेट होना चाहिए और जो हल्के फुल्के तौर पर रहनुमा उसूल हम बता रहे हैं उसके अंदर ही एक रहनुमा उसूल ये भी उलमा फरमाते हैं कि इल्मे दीन हासिल करने के लिए बाकायदा दुआएं करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने कहा कि ठीक है मैं इल्म हासिल कर ही रही हूं किताबें पढ़ रही हूं, नहीं, मुस्तकिल दुआ की भी जरूरत है। बाकायदा जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये रोजतुल जनात जो कि आगा खुनसारी की किताब है उसके अंदर भी ये बात मौजूद है और कससुल उलमा जो मिर्जाए तनकाबिनी की है उसके अंदर भी ये बात मौजूद है और इसके जो गवाह हैं वो सैयद मेहदी बहरुल उलूम और सैयद मोहम्मद जवाद आमिली जो कि साहिब मिफ्ताहुल करामा के नाम से मशहूर है। इन दोनों के हवाले से इन किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि आयतुल्ला शेख जाफर आले कशफुल गिता जिनकी किताब कशफुल गिता है, शेख जाफर आले काशफुल गिता, उनके मुतालिक उलमा फरमाते हैं कि जिस वक्त ये खाने काबा की जियारत के लिए तशरीफ ले गए शेख जाफर, वहां जाकर एक तो ये होता है ना कि आमतौर पर मशहूर भी है लोगों के अंदर, वैसे वो हर बार खाने काबा को जब भी जियारत की जाए और जो दुआ मांगी जाए वो इंशाल्लाह जरूर कबूल होती, तो कह रहे हैं जिस वक्त इनकी खाने काबा पर पहली निगाह पड़ी तो इन्होंने एक दुआ की थी कि परवरदिगारा मेरे खानदान और औलादों को फकीह बना, तो परवरदिगार ने उनकी इल्मे दीन की तड़प को देखकर उनकी इस दुआ को कबूल किया और फिर उनके पूरे खानदान बाद तक से लेकर आज तक जो है उलमा का एक सिलसिला उनके खानदान के अंदर जारी हो सारी। अच्छा, हमारे यहां भी बहुत से सारे लोग जब बच्चा पैदा वैदा होने लगता है और पैदाइश के बाद दुआ करते हैं कि मैं इसको आलिम बनाऊंगा, मैं इसको मुज्तहिद बनाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता चला जाता है और आगे बढ़ता जाता है वो उम्र उसकी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो अपनी इस दुआ से वालदैन दस्तबरदार होते चले जाते हैं और बिलाखिर वो उसी दुनिया के झमेलों के अंदर वो बच्चा भी चला जाता है, उसको फिर उसके बाद ट्रैक भी देना जरूरी होता है, फिर खास स्टाइल से उसी बच्चे को इल्मे दीन के एतबार से आगे भी बढ़ाना होता है, उसके लिए खास प्लानिंग करना पड़ती। आयतुल्ला शेख जाफर आले कशफुल गिता जो थे उन्हीं की औलादों में से फिर शेख मोहम्मद हुसैन आले कशफुल गिता जैसा फकीह भी आया उनकी इस दुआ के नतीजे में और फिर उस शेख मोहम्मद हुसैन आले कशफुल गिता उनके खुद शागिदों के अंदर आयतुल्ला मोहसिनुल हकीम उनके शागिद बने, आगा शेख मोहम्मद जवाद मुगनिया जो दरमियान में बैठे हुए हैं वो उनके शागिद बने और बराबर में आयतुल्ला बाकर सदर थे उस वक्त और ये आयतुल्ला शहीद काजी तबातबाई ये उनके शागिर्दों में पूरा एक सिलसिला उस लिहाज से चलता है। यानी इल्मे दीन के साथ साथ तवस्सुल मासूमीन ये बहुत ज्यादा जरूरी है इल्मे दीन को हासिल करने के लिए, इतना ज्यादा जरूरी है कि जो किताब एक लिखी गई है करामात मानवी के नाम से उसमें हाज आकाए बाकरी फरमाते हैं कि जो कि आयतुल्ला हादी मिलानी के शागिर्दों में से थे कि एक दफा मैं आयतुल्ला हादी मिलानी की खिदमत में गया तो उन्होंने मुझसे एक दरख्वास्त की कि मजलिस के लिए जब भी तुम मिंबर पर जाओ तो मुझे उस मजलिस में से 40 नौजवानों का इंतखाब करके मेरे पास लेकर आओ। मैंने कहा कि मैं बहुत ही मुताज्जिब हुआ कि समझ में नहीं आया कि 40 नौजवानों को बुलाने का मकसद क्या है। बहरहाल मैंने उनके हुक्म की तामील की और 40 नौजवानों को लेके आयतुल्लाह हादी मिलानी के पास गया। आयतुल्लाह हादी मिलानी कमरे में थे, कहा एक एक करके नौजवान को अंदर भेजते रहो। कह रहे हैं एक एक नौजवान अंदर जाता, जब वापस आता तो आंखों से आंसू जारी हैं, सिसकियां लेते हुए बाहर निकलता। फिर दूसरा जवान अंदर जाता, यहां तक कि जब आधे जवान चले गए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं दरवाजा खोल के अंदर आ गया। तो अंदर आया तो मैंने देखा कि कफन उस्ताद आयतुल्ला हादी मिलानी के सामने रखा हुआ है और उस्ताद कुछ मसाइब जो है वो पढ़ते हैं और इमाम हुसैन को याद करते हैं। तालिब इल्म की उस नौजवान की आंखों से आंसू जारी होते हैं, अपने कफन से उसके आंसुओं को साफ करते हैं और उसके बाद एक एक करके तालिब इल्मों को और वो नौजवानों को बुलाते हैं अपने पास और उन सबके आंसुओं को उस कफन के अंदर जज्ब करते हैं। तो मैंने कहा आगा आप एक मर्जी हैं, आपको इसकी क्या जरूरत है? तो आयतुल्ला हादी मिलानी कहने लगे जो चीज आखरत में सबसे ज्यादा काम आएगी वो यही तवस्सुल और गिरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यहां आमतौर पर तालिब इल्मों का दिमाग खराब होने लगता है, जैसे जैसे इल्म के अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं शकुको शुभात ये नहीं वो नहीं और तवस्सुल और इन सबसे अपने आप को सोचते हैं कि नहीं ये तो जाहिल कस्म के आवाम वगैरह का एक तरीकेकार है और इल्म में इंसान को जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, यही तवस्सुल यही गिरिया बड़े बड़े मराजे। अब सिर्फ इसी बात को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो पूरा एक दर्स उलमा के हवाले से हो सकता है कि वो हसरतें करते हैं कि काश हम एक जिक्र इमाम हुसैन करने वाले होते, काश हम सारी जिंदगी गिरिया करने वाले होते, अपने उस इल्म को एक तरफ रखकर सिर्फ गिरिया और तवस्सुल को इतना ज्यादा अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ाते और वो भी जाहिर इस मुकाम तक इल्म के जरिए पहुंचे। इनके अंदर कोई एक दूसरे से तकाबुल नहीं है बल्कि तावन है। अच्छा, अब एक बात इसमें और कि तालिब इल्म जितना ज्यादा जराए इल्म का एहतराम करेगा, इल्म के जराए का, किताबों का एहतराम, हत्ता कि आपके पेंसिल पेन है इसका एहतराम, उठा के जैसे पेन आपने ऊपर के नीचे फेंक दिया, नहीं, ये जराए इल्म है, इनका बड़ा एहतराम की जरूरत है। किताबें ऐसी ले जाके डाल दी जमीन पर, जिस बैग में किताबें थी आपने बैग ऐसी जमीन पर जोर से फेंक दिया नीचे। हर वो तरीकेकार जिससे इल्म का इकराम हो आपको हासिल करना, इससे इल्म हासिल होता है। अभी जिनकी जिक्र हो रहा था आयतुल्ला शेख जव्वाद तबरेजी, ये इसका शिद्दत से कायल थे कि जराए इल्म का बहुत ज्यादा एहतराम करना चाहिए। उनसे बाकायदा पूछा भी गया कि आजकल के तालिब इल्मों की अजीब हालत है, किताबों का कोई एहतराम नहीं करते, किताबों के मसलन ऊपर चाय के कप के निशानात बने हुए होते हैं, और इन ऐसे अफराद के लिए आप क्या नसीहत करेंगे ऐसे तालिब इल्मों के लिए? तो आका शेख जव्वाद तबरेजी फरमाते हैं, ने उस वक्त फरमाया कि दो तरह की किताबों का तो खास तौर पर एहतराम लाजिम है। दो तरह की किताबें, उसमें नंबर एक है फिका की किताबें, बहुत ज्यादा एहतराम की जरूरत है दीगर तमाम किताबों से भी ज्यादा, और दूसरी अहादीस मासूमीन पर मुश्तमिल किताबें। ये कहते, अच्छा जुमला देखिए आयतुल्ला शेख जव्वाद तबरेजी का, फरमाते थे इन दो किताबों का हाथों में उठाना हाथों को आतिश जहन्नुम से आजाद कराना है। ये तालिब इल्म के हाथ में रहनी चाहिए, यानी फिका की किताबें अहादीस की किताबें, और खुद यानी उस लिहाज से अगर आप कहें तो ये तौजील मसाइल वो आपके आपके हाथ में होनी चाहिए और अखलाकियात और अहादीस पर मुश्तमिल किताबें कितनी भी हो सकती हैं। तो मैंने मिसाल के तौर पर जो अहादीस पर मुश्तमिल किताबें मिजान हिकमत, उसकी कितनी 8 जिल्दें तो कम से कम उर्दू तर्जुमा हो चुकी, ये हर मौजूआती एतबार से हदीसें, तो ये दो किताबें अलल खसूस कहते थे इसका एहतराम बहुत लाजिम है। और खुद शेख जव्वाद तबरेजी, एक तो वसाइलो शिया अहादीस की किताबें वसाइलो शिया इनके हाथ में हर वक्त रहती थी, और एक आयतुल्ला सैयद मोहम्मद काजिम यजदी तबाताबाई की किताब अल उरबतुल विस्का जो फिक्र की किताब थी, फिक्र की किताब है, वो इनके हाथ में हर वक्त रहती थी। कभी किसी किताब को जोर से जमीन पर रखा नहीं, कभी हत्ता के मेज के ऊपर भी कभी जोर से किताब को नहीं रखते थे, इतना एहतराम के कायल थे कि शेख जव्वाद तबरेजी के बेटे फरमाते हैं कि कभी हत्ता के हमने अपने वालिद को लेट कर कोई किताब पढ़ते हुए भी नहीं देखा, हमेशा दो जानों होकर या चार जानू बैठकर जो है किताब का मुताला करते थे, इतना एहतराम में इल्म के कायल थे किताबों के भी एहतराम के। तो और इस हद तक उसके साथ तवस्सुल की बात जो उससे पहले हम बयान कर रहे थे, इस हद तक शेख जव्वाद तबरेजी के इधर दर्स के दौरान भी ये कभी आम जिंदगी में सिर्फ लफ्ज अहले बैत भी सुन लेते थे तो फौरन रोना शुरू कर देते थे, हालत मुतगैर हो जाती थी और आंखों से आंसुओं की बाकायदा लड़ियां जो हैं वो जारी हो जाती थी। हद तक इस बात के भी कायल थे कि अगर कोई उनके सामने मसलन कह देता था कि इमाम अली ने फरमाया तो इस पर भी नाराज होते थे, कहा गैरों की तरह से नाम न लिया करो बल्कि हमेशा अलकाबात के साथ नाम लिया करो, हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, अब दो बस नुकते इसके अंदर और गुफ्तगू उसके बाद इख्तिताम पजीर होगी कि उसके बाद एक मुख्तसर सा लेक्चर और है, उसके बाद मुख्तसर सा एक मीलाद होगा और उसके बाद जो असनाद वगैरह जो तकसीम होंगी, जो भी जाकरी कोर्स हुआ है उनका एक रिजल्ट भी अनाउंस होगा। अब जो आखिरी दो पॉइंट्स इसके अंदर आज की हद तक हैं कि देखिए वो खवातीन और वो तालिबात की जिन जो कि अभी जिनको शादी के मरहले से गुजरना बाकी है, वो खसूसी तौर पर इसकी दुआ अलग से किया करें कि इल्म दीन में मुआविन हम सफर उनको नसीब हो, क्योंकि हुसूल इल्म दीन में इसका बहुत बड़ा दखल होता है। ताबुन करने वाला शौहर हो, ताबुन करने वाली बीवी हो, तो ये सफर आसानी के साथ तय होता है। अगर वो ताबुन ना करें, इनमें से कोई भी एक खराब हो जाए, तो अच्छे अच्छे पढ़ने लिखने वाले तालिब इल्म और तालिबात वो अज़्वे मुअत्तल बन के रह जाते हैं, गलत जगहों पर शादी हो जाए तो इंतहाई मुश्किलात का बाद में सामना करना पड़ता है। आयतुल्ला हुसैन बुरुजर्दी, जिनका अभी इससे पहले जिक्र हुआ था, ये खुद फरमाते हैं कि जब मैं तालिब इल्म था और इस्फहान में ज़ेर तालीम था, और इससे भी और पहले जब और जवान थे, तो कह रहे थे कि इस्फहान में मैं इस वजह से गया था कि उस जमाने में इस्फहान के जो असातिज़ा थे वो बहुत कम नजीर थे, यानी बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही बड़े बड़े उलमा उस जमाने में इस्फहान में थे। आयतुल्ला इब्राहिम कलबासी थे और आयतुल्ला सैयद बाकर दरजाई थे और आका हकीम कशकाई थे, जो उस जमाने में बहुत बड़े बड़े उलमा में, इसके अलावा हकीम बुजुर्ग मुल्ला मोहम्मद काशानी जो आखुंद काशी के नाम से मशहूर थे, जो उस जमाने में इस्फहान के बहुत बड़े उलमा में इन सब अफराद का शुमार होता था। और मैं हर वक्त इन असातिज़ा की खिदमत में हाजिर रहकर इल्म हासिल करता था और मैं आशिक़े असातिज़ा था, यानी जितने उस्ताद थे मैं हद से ज्यादा उनकी खिदमत में रहकर इल्म हासिल करता था और इल्म मुसलसल हासिल करता जा रहा था, यहां तक कि एक दिन मेरे वालिद का खत मेरे पास आ गया, कहा बेटा हुसैन बुरुजर्द वापिस आ जाओ, तुम्हारी शादी के इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। मेरे पैरों तले गोया जमीन निकल गई, अभी बहुत इल्म हासिल करना बाकी था, बहुत कुछ अभी इल्म के लिहाज से मेरे प्लानिंग में चीजें थी, लेकिन अब क्या करता। बहरहाल मैंने एक जवाबन अपने वालिद को एक खत लिखा और कहा कि पिदर बुजुर्गवार, अभी मुझे शादी से माफ फरमाएं और मुझे इजाजत दें कि मैं अपने इल्म दीन के सिलसिले को जारी रखूं। वालिद तक खत पहुंचा और वहां से फिर फौरन ही खत का जवाब आया दोबारा कि क्या तुमने कुरान में यह आयत नहीं पढ़ी, वबिल वालिदैन एहसाना। बात याद रखो कि अगर वालिद की बात पर तुमने ध्यान नहीं दिया तो इल्मे दीन हासिल करने में रुकावट आ जाएगी। अच्छा, यहां उन तालिबात को रोक, अभी बात को रोक कर मैं कहूंगी, वो तालिबात सोचिए जो घरों में वालिदैन के साथ जबान चलाती हैं, जोर जोर से चीख चीख कर बात करती हैं, उनके इज्जत और एहतराम में कमी करती हैं, वो जाहिर आपने देखा जब माशरे के अंदर कोई उभर के निकल के भी नहीं आता, इल्मे दीन में बड़े मुकाम पर भी नहीं जाता। आयतुल्ला बुरुजर्दी कहते हैं जैसे ही मेरे वालिद ने ये लिखा कि क्या तुमने कुरान में आयत नहीं पढ़ी और अगर तुमने वालिद की बात नहीं मानी तो इल्मे दीन हासिल करने में रुकावट आ जाएगी, मैं बिला फासला बुरुजर्द भागा गया। बहरहाल वहां शादी हुई, उसके बाद शादी के बाद वालिद ने कहा अब तुम्हें जहां जाना चाहो चले जाओ। तो कहते हैं कि आयतुल्ला बुरुजर्दी ये बात फरमाते हैं कि वालिद ने वो जो इकदाम किया था और एक ऐसी खातून मेरे लिए तलाश की थी जो आज मैं जो ये बुरुजर्दी बनकर यहां बैठा हुआ हूं, आयतुल्ला बुरुजर्दी कहते थे, और ये जो मुकाम मरजियत तक मैं पहुंचा हूं, कुम में मासूम है कुम में आयतुल्ला बुरुजर्दी जिस तरह से दर्स वगैरह दिया करते थे बैठकर, जो ये मुकाम मरजियत तक पहुंचा हूं ये उस खानम की वजह से है जो मेरे वालिद ने मेरे लिए तलाश की थी, और इस लिहाज से इस दुआ को कभी फरामोश ना करें। اور وہ خواتین کی جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور ان کے شوہر اس اعتبار سے معاون نہیں ہیں اس سلسلے میں، ان کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، حکمت سے ان کو راضی کریں، ان تک بھی یہ معلومات پہنچائیں، ان کو بھی احادیث اور واقعات بتائیں، اور آہستہ آہستہ بہت سلو طریقے سے، بہت غیر محسوس انداز میں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ فوراً اوور نائٹ کوئی بالکل تبدیلی لانے کی ان میں فکر کی جاتی ہے، جس سے معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں. بہت حکمت کے ساتھ ایسے افراد کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. اور آخری بات اس کے اندر یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہرحال طالب علم جو ہے کبھی بھی اپنے استاد کی کوئی بے احترامی، بلکہ اس کے احترام میں کبھی کمی بھی نہ کرے، یہ بھی توفیق علم دین کو سلب کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے. روایات میں بھی کہ جس نے ایک حرف بھی تم کو سکھایا اس نے گویا اپنا غلام تمہیں بنا لیا، اس کا حق آ جاتا ہے. ان کے حق میں ذرا کوتاہی نہ کریں، بلکہ احترام میں بھی کمی نہ کریں. میں نے اکثر پچھلی جو گروپس تھے طالبات، ان کو یہ بات علماء کی پہنچائی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ کوئی طالب علم اگر اپنے استاد کی بے احترامی کر دے، یا بلکہ جتنا احترام کرنا چاہیے اتنا احترام نہ کرے، کمی کر دے، تو ہم نے ایسے بہت سارے افراد کو بازاروں میں کمر بند بیچتے دیکھا ہے. یعنی ایسی ان سے توفیقات سلب ہوئیں کہ اس کے بعد علم دین تو چھوڑی، کوئی ٹیکسیاں چل، یعنی معاذ اللہ کے کوئی خرید و فروخت کرنا ہے، ٹیکسی چلانا کوئی حرام چیز ہے نہیں. اتنے بڑے مقام، ایک عالم دین کا جو مقام تم کو ملتا، اب تم دیکھو کہ گلی کوچوں کے اندر اس طرح سے تمہیں رہنا پڑ رہا ہے. ایک علم کا سلسلہ رک جاتا ہے، ایک بے برکتی اس سلسلے میں آ جاتی ہے، اور استاد کا کر کبھی غمگین ہو جائے تو علم دین کا یہ سلسلہ. اور کتنے ذہین طالب علم بھی خواہ کیوں نہ ہو، کتنے ذہین طالب علم ایسے ہیں کہ بہت ذہین تھے لیکن استاد کی کوئی نہ کوئی بے احترامی کی، آج نسیان منسیہ ہو گئے، کہیں دور دور تک علم دین کے حوالے سے کہیں ان کا نام بھی سننے میں نہیں آتا، حالانکہ اتنے زیادہ ذہین ہوا کرتے تھے. اس کے مقابلے میں وہ طالب علم جو اتنے زیادہ ذہین نہ ہوں لیکن استاد کا احترام کرتے ہوں، وہ پھر بھی دین کے ساتھ وابستہ رہ کے دین کی کسی نہ کسی انداز سے خدمت کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال دماغ میں رکھیے، اچھا کوئی بھی، آپ کو یہ سب چیزیں اپنے اندر خود پیدا کرنا پڑیں گی علم دین کرنے کے لیے. کوئی کسی کو زبردستی جبر کر کے نہیں پڑھا سکتا ہے علم دین. وہ والا طور طریقہ تو یہاں پہ مدارس کا بہرحال اس انداز سے نہیں ہے کہ جو کہ عام طور پر لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے، کہ اس انداز سے کوئی بہت زیادہ سختی کر کے کسی کو جو ہے وہ علم دین حاصل، یا عام دنیاوی طور پر بھی کوئی شخص کسی دوسرے کو پڑھا سکتا ہے. تو بہرحال آپ کو خود سے علم دین حاصل کرنا ہے، اور خود اس علم دین کو حاصل کرنے کے جتنے بھی نقصانات ہیں ان کا علم حاصل کر کے اس کو نقصان پہنچنے سے بچانا ہے. وہ نسبت جو انبیاء 124,000 انبیاء سے ہوتی ہوئی آئمہ معصومین کے اندر پہنچی، پیغمبر اسلام سے ہوتی ہوئی پھر آگے علماء اور فقہا میں آئی، اور وہاں سے ہوتی ہوئی ایک ابتدائی دینی طالب علم کے اندر وہ میراث علمی پہنچتی ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام بہت زیادہ شدت کے ساتھ کرنا لازم ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کی گفتگو ہماری آگے کی بڑھے گی، اس کے اندر نئے نئے موضوعات کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں مزید حاضر ہوں گے. اور اس کے بعد فوراً بعد ہی دوسری کلاس ہے، وہ مختصر سی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا پروگرام ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.
أنت جنة يا صاحب السماء.